ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को समन भेजा है और कहा है कि उसके सैन्य राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा। सूत्रों के अनुसार पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद पिछली रात ये निर्णय लिया गया। इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर कल शाम हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी।
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025.
विदेश सचिव ने बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव ने कहा कि 1 मई तक उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम करके 30 की जाएगी। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि बैठक शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी। इस बीच जम्मू और कश्मीर में कुलगाम जिले के तंगमार्ग क्षेत्र में कल रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान जारी है। इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में कल रात मिली सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई थी। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के संयुक्त दल ने आतंकरोधी गतिविधियों को संचालित किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाएगी।
मैं पूरे परिवार और हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मधुबनी के झंझारपुर से देश के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। वे 13,480 करोड़ रुपए लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू हो रहा है। सभी देशों में यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। श्रीलंका में इस वर्ष के स्थानीय सरकार के चुनावों के लिए डाक मतपत्र देने का कार्य आज से शुरू हो गया है, जिसमें 6,48,000 से अधिक योग्य मतदाता अपने मतपत्रों का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। डाक मतपत्रों पर 4 निर्धारित तिथियों पर होगा, 24, 25, 28 और 29 अप्रैल। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए और 54 घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया खबरों के अनुसार हमलों से शहर में कई जगह आग लग गई। क्षतिग्रस्त आवासीय इमारतों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।